आप सुन रहे हैं SBS हिंदी। अपने रेडियो पर हर शाम सुनिए हमारा कार्यक्रम। आप हमारा कार्यक्रम हमारी वेबसाइट पर और SBS मोबाइल ऐप द्वारा सुन सकते हैं। sbs.com.au/hindi पर जाएं।
ऑस्ट्रेलिया में ऑटिज्म से पीड़ित बच्चों की संख्या बढ़ती जा रही है। ऐसे में राष्ट्रीय विकलांगता बीमा योजना यानी NDIS पर भारी दबाव पड़ रहा है, जिसे देखते हुए सरकार ने उन बच्चों को NDIS से हटाकर थ्राइविंग किड्स नाम की एक नई योजना में डालने का ऐलान किया है। इस नई योजना को लेकर पेरेंट्स, ऑटिज्म बच्चों के हित में काम करने वाली संस्थाओं का कहना है कि उन्हें इस योजना के बारे में इसकी घोषणा के बाद पता चला है। ऑटिज्म से पीड़ित बच्चों के लिए सरकार की इस नई योजना ने पेरेंट्स और ऑटिज्म से जुड़ी संस्थाओं समेत सेवा प्रदाताओं को भी हैरान कर दिया है। ऑस्ट्रेलियाई ऑटिज्म अलायंस की सह अध्यक्ष जेनी कैरेबलोस का कहना है,
that there is a commitment to children's development, but we haven't had any consultation, so a little bit concerned about what this actually means for autistic children and their families.
नई योजना थ्राइविंग किड्स का ऐलान फेडरल स्वास्थ्य मंत्री मार्क बटलर ने बुधवार को किया था, जिसका जिक्र वे कर रही थी। इस नई योजना की शुरुआती लागत $2 बिलियन है और इस योजना का लक्ष्य उन बच्चों को NDIS से हटाकर नई योजना में शामिल करना है जो स्वास्थ्य मंत्री के मुताबिक हल्के से मध्यम स्तर के ऑटिज्म से पीड़ित हैं। स्वास्थ्य मंत्री का कहना है कि विकासात्मक विलंब या ऑटिज्म से पीड़ित बच्चों की संख्या बढ़ती जा रही है और उन्हें NDIS योजना में शामिल करना व्यावहारिक नहीं है।
Now, I think most Australians would be alarmed to know that now one out of every 10 six-year-olds are on the NDIS, including 16% of six-year-old boys. Tens and tens of thousands of young children with mild to moderate developmental delay or autism are on a scheme set up for permanent disability.
Thriving Kids योजना के तहत सरकार का लक्ष्य वर्तमान सहायता नेटवर्क जैसे कि GP और अन्य सामुदायिक स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच को बेहतर और मजबूत बनाना है। इसके तहत 3 साल के बच्चों के लिए जांच को बल्क विलिंग में शामिल किया जाएगा और स्वास्थ्य पेशेवरों को बेहतर प्रशिक्षण मुहैया कराया जाएगा। मंत्री का कहना है कि ऑक्यूपेशनल थेरेपी, स्पीच पैथोलॉजी या साइकोलॉजिकल थेरेपी के लिए जरूरत के अनुसार मेडिकेयर वित्त पोषण किया जाएगा।
Individualized plans and budgets make sense for people with lifelong disability. It gives them more choice and control about the support that they receive. But families with a young child who's missing some milestones are not best helped by receiving a budget of $10,000 or $20,000 or $30,000 and then being expected to work out themselves how to spend it. And frankly, many of those children are being overserviced.
मंत्री ने यह भी कहा कि सरकार सामुदायिक केंद्रों में दी जाने वाली मदद का विस्तार करेगी और एक राष्ट्रीय ऑनलाइन सूचना सेवा शुरू करेगी, जैसा कि वह 1800 मेडिकेयर या केयरर गेटवे है। अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन प्रोवाइडर्स और स्कूलों की भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका रखी गई है।
Mental health in primary schools or MIPS as it's known is just one example of a more broad-based approach to supporting young children with a range of needs at that age, including autism or ADHD. Developed by the Murdoch Children's Research Institute, this program has been delivered already across Victorian primary schools and is now being piloted in Queensland and South Australia.
मार्क बटलर का कहना है कि राज्य सरकारों ने भी फेडरल सरकार की $2 बिलियन की इस योजना में उतनी ही रकम जोड़ने पर सहमति जताई है, लेकिन विक्टोरिया की प्रीमियर जैसिंटा एलन का कहना है कि कई राज्य अभी भी इस पर काम कर रहे हैं।
Like many state and territories, we heard about the proposed changes from the federal government when the minister made his address. So we stand ready to work constructively to go through the detail, and I think that's particularly important when we know that there are many families, particularly many parents today, who have got many questions.
ऑटिज्म से पीड़ित लड़कियों, महिलाओं और विविध लिंगी लोगों की मदद के लिए येलो लेडी बग नाम की चैरिटी संस्था चलाने वाली कैटी कॉलेज का कहना है कि नई योजना के ऐलान से उनका दिल टूट गया है।
I'm autistic and I've got two autistic teen girls and we would be considered mild as per what the minister's statements were. But what's damaging about that is that our experience isn't mild at all. And so when you use those kind of descriptions, you're not fully understanding the internalized experience. There's such a cost to masking growing up in a world that isn't built for us. And so there's a lot of impact on mental health. And there's in our community a lot of self-harm and eating disorders and school can't. And that's the real cost that we start to see throughout the life stages of families like ours.
पीपल्स विद डिजेबिलिटी ऑस्ट्रेलिया द्वारा 11 संगठनों की ओर से जारी एक संयुक्त बयान में कहा गया है कि वे इस बात से निराश हैं कि सरकार ने इस योजना को लेकर अभी तक ऑटिज्म समुदाय से चर्चा नहीं की है। उन्होंने चेताया कि इसके तहत सभी बच्चों को मिलने वाली मदद सबके लिए मुफीद नहीं होगी, क्योंकि NDIS के तहत जो मदद मिलती है उसमें उनके पास उनके जरूरतों के अनुसार अधिक विकल्प और नियंत्रण होता है। मैगी अपने 3 बच्चों के साथ सिडनी में रहती हैं। उनका बेटा निकोलस अब 18 साल का है, जिसे मध्यम स्तर का ऑटिज्म है। उनका कहना है कि NDIS से मिलने वाली मदद उनके परिवार का जीवन बदलने वाला साबित हुआ है। वह कहती है कि यह महत्वपूर्ण नहीं है कि किस योजना के तहत मदद दी जा रही है, बल्कि ज्यादा जरूरी है कि बच्चों को शुरू में ही मदद मिले। वे कहती हैं,
The intervention works. We've seen the data. We've seen the evidence. What the ideal picture is that when they're younger, they receive that intensive intervention, and so that the parents are trained to work with their child, and they understand their child, and the child actually also learns to communicate effectively or more effectively, and so their chances in actually employment when they're older. And their chances of having a happier life because they're able to communicate more effectively are going to be much greater.
NDIS योजना की लागत 22% सालाना की दर से बढ़ रही है, जिससे मेडिकेयर, डिफेंस और एज्ड केयर पर खर्च बढ़ाना मुश्किल है। इससे यह योजना व्यवहारिक नहीं रही है। सरकार ने 2023 में एक स्वतंत्र समीक्षा के बाद अल्प अवधि से मध्यम अवधि में इस योजना पर खर्च वृद्धि को 8% पर रोकने का निर्णय लिया था। गठबंधन फिलहाल नए बदलावों का समर्थन नहीं कर रहा है। विपक्ष की उपनेता और सामाजिक सेवाओं की प्रवक्ता अमांडा रेस्टन का कहना है,
We still don't know what's happening with foundational supports, which was an announcement about a change to the NDIS program last year. So we've got another announcement with no details and no certainty and no pathway by which the minister has announced that he's actually going to deliver what he said.
Thriving Kids कार्यक्रम अगले साल जुलाई से शुरू कर दिया जाएगा और इसे साल 2027 के जुलाई से पूरी तरह से लागू कर दिया जाएगा। SBS न्यूज से एडविना गाइनन की इस खबर को SBS हिंदी के लिए प्रस्तुत किया शशि कुमार ने। इस रिपोर्ट में दी गई जानकारी सामान्य है। SBS न ही यहाँ प्रकट किए गए विचारों से सहमत है और न ही असहमत। अपनी विशेष परिस्थिति के लिए किसी विशेषज्ञ से सलाह लें।
SBS रेडियो से डाउनलोड करने के लिए आपका धन्यवाद। हमारा पूरा कार्यक्रम आप कैसे सुने, इसके लिए sbs.com.au/hindi पर जाएं।